हरे स्याद पदो भुवो स्व जन्म निशितो गांधाम तवानुकंपितम् दिष्ट्या भाग्यवश हरे हे भगवान अस्याह इसके भवतः आपके पदः स्थान का भुवः इस धरा पर भारः असुरों द्वारा उत्पन्न भोज अपनीत दूर हुआ तब आपके जन्मना अवतार लेने से इशितुहु सबके नियंता आप दिष्ट्या तथा भाग्य से अंकितम निस्संदेह अंकितम चिन्हित त्वत् पदकैः आपके चरण कमलों से सुशोभने शंख चक्र पद्म तथा गदा चिन्हों से अलंकृत द्रक्ष्यामः हम देखेंगे गाम इस पृथ्वी पर धाम तथा स्वर्ग में भी तव अनुकंपिताम हम पर आपकी अहेतु की कृपा होने से अनुवाद और तात्पर्य ज्वाइंग देश एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की चार अनुवाद हे प्रभु हम भाग्यशाली हैं कि आपके प्राकट्य से इस धरा पर असुरों के कारण जो भारी बोझ है वह शीघ्र ही दूर हो जाता है निस्संदेह हम अत्यंत भाग्यशाली हैं क्योंकि हम इस धरा में तथा स्वर्ग लोक में भी आपके चरण कमलों को अलंकृत करने वाले शंख चक्र पद्म तथा गदा के चिन्हों को देख सकेंगे तात्पर्य भगवान के चरण कमलों के तलवे शंख चक्र गदा पद्म चिन्हों से अलंकृत होते हैं साथ ही ध्वजा तथा वज्र भी अंकित रहते हैं जब कृष्ण इस धराधाम में या स्वर्गलोक में विचरण करते हैं तो ये चिन्ह दृष्टिगोचर होते रहते हैं वृंदावन धाम दिव्य स्थान है क्योंकि यहाँ कृष्ण कई बार विचरण करते हैं वृंदावनवासी भाग्यशाली थे कि उन्होंने इन चिन्हों को जगह जगह देखे जब अक्रूर कृष्ण तथा बलराम को कंस द्वारा आयोजित उत्सव में ले जाने के लिए वृंदावन गए तो वे वृंदावन की भूमि पर कृष्ण के चरण चिन्हों को देखकर भूमि पर लौटकर कराहने लगे। ये चिन्ह उन्हें भक्तों को उन्हीं भक्तों को दिखते हैं जिस पर भगवान की अहेतु की कृपा होती है। देवतागण केवल इसलिए हर्ष नहीं थे कि भगवान असुरों का भार दूर कर देंगे, अपितु इसलिए भी वे भगवान के चरणों पर अंकित चिन्हों भी भूमि पर देख सकेंगे। गोपियां चरण कमलों में विचरण करते कृष्ण के चरण कमलों का सदैव चिंतन करती रहती थी, और जैसे कि पिछले श्लोक में कहा गया है, केवल कृष्ण के चरण कमलों के चिंतन से गोपियां अध्यात्म में लीन रहती थी। गोपियों की ही तरह जो भगवान के विचार में सदैव लीन रहता है, वह भौतिक स्तर से ऊपर स्थित रहता है और फिर इस भौतिक जगत में नहीं आता। अतः हमारा कर्तव्य है कि हम सदैव भगवान की चरण कमलों के विषय में सुने, कीर्तन करें और चिंतन करें, जिस तरह की वृंदावन में रहने वाले वैष्णव जन अहर्निश भगवान की चरण कमलों का चिंतन करते रहते हैं। ओम ज्ञानविरंदस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामहं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणदलिता शिवशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धौ दीनबन्धौ जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वंशाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जैसे मैंने कहा था कि भी ये जो श्लोक चल रहे हैं देवताओं के द्वारा उच्चारण के लिए प्रार्थनाएं हैं, जिसको गर्भस्तुति कहा जाता है। अभी हम गर्भस्तुति को जब तक ये सारे अध्याय चलते रहेगा आगे कुछ श्लोक तक, हमें गर्भस्तुति के सारे श्लोक उच्चारण करेंगे। शायद आपके पास एक कागज है तो ले लीजिए, नहीं तो एक कागज के पास है तो सारे श्लोक उच्चारण करेंगे। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम ऋत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। पंच विद षडात्मा सप्त त्वगश्च विदपो नवाक्षो दशश्चारिद्विखगो हि आदिवृक्षः वैगास्य शतप्रसूते स संसन्निधानं त्वमनुग्रहस्य त्वन्मायया संवृतचेतसस्त्वां पश्यन्ति नानाविपस्थितो ये बिभर्षरूपाण्यमबोध आत्मा क्षेमाय लोकाय चराचरस्य सत्त्वापपन्नानि सुतावहानि सकामभद्राणि मुहोकलानां त्वय्याम्बुजाक्षा किल सत्त्वधाम्नि समाधिनावेष्टजपेतसैके त्वत्पादबोधेन महत्कृतेन कुर्वन्ति गोवत्सपदं भवाब्धिम् समुत्तीर्ण्यस्तरं द्युमन् अवार्णवं भीमभद्रसुहृदा अवतापदाम्बोरुहणावमत्र ते निधाय याता सदनोग्रहो भवान् इन्येनरविन्दाक्षविमोक्तमानिनः त्वया सद्भावात् विशुद्धबुद्धयः आरुह्य कृच्छ्रेण परं पदं तत पतन्त्यदो नादृतद्युष्मदाङ्ग्रय तथा न ते माधवतावका क्वचित् पश्यन्ति मार्गा त्वयि बद्धसुहृद त्वय्याभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानु कम्पमूर्धुष प्रभो सत्त्वं विशुद्धं श्रयते भवां स्थितौ शरीरिणां श्रेयोपायनं वपु वेदक्रियायोगतपसमाधिवेस्त्ववारणं येन जना संयते त्वं न चेद्धातुरिदं निजं भवेत् विज्ञानमज्ञानविदापमार्जनं गुणप्रकाशैरनुमीयते भवान् प्रकाशचेत्यस्य येन वा गुणेन गुणजन्मकर्मभिः निरूपितव्ये तव तस्य साक्षिणः मनोवचाभ्यां मनुमेयवर्त्मनो देवक्रियायां प्रत्यन्त्यतापि नामानि रूपाणि मङ्गलानि ते यास्वयस्त्ववच्चरणारविन्दयोरावेष्टचेता न भवाय कल्पते भवतापदो भुवो वारोपणितस्तव जन्मनीषितु वृक्षाङ्कितां तव पदतेषु शोभनेन द्रक्षामगाम्धां कृतवानुकम्पितम् अते भवस्येव भवस्य कारणं विना विनोदं बततर्कयामहे भवो निरोधस्थितिराप्यविद्यया कृतमश्रयात्मनि तच्च नरसिंहवराहंस राजन्यविप्रविबुधेषु कृतावतार सम्पाशिनस्त्रिभुवनं चैरात्मिषु हारं भुवो हरयदुत्तमवन्दनं ते शिगतपरपुमान् अंशेन साक्षात् भगवान् भवायनः मा भूद्भयं भोजपतेर्मुमुक्षोर्गोप्ता यदूनां भविता त्वमात्मज आज का श्लोक 38वां श्लोक है। ये बहुत सुंदर श्लोक है, महत्वपूर्ण श्लोक है। दिष्ट्या हरे स्यान् भवत पदो भुवो मारो पणितस्तव जन्मनेशितुः दिष्ट्यांकितां त्वत्पदकैः सुशोभने द्रक्ष्यामगांधां च तवानुकंपितां। ये श्लोक में देवतागण भगवान के प्राकट्य होने से उनके लिए क्या, कौन से प्रकार के दो मंगलकारी, कौन सा प्रकार का भाग्य है, उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं। पिछले की श्लोकों में भगवान के प्राकट्य होने से देवतागण कहते हैं कि आपने ये साबित किया कि आप के जो शास्त्र है वो सत्य है, भक्तों के जो अनुभूति है वो सही है। यानी दूसरे शब्दों में, हे भगवान, आप प्रकट होके स्वयं एक गवाह दे रहे हो। गवाह मतलब प्रूफ। क्या प्रूफ दे रहे हो? कि मेरा एक रूप है, मेरा एक स्वरूप है। इतना ही नहीं, मेरे भक्तों का जो अनुभूति है वो भी सत्य है। नहीं तो अन्य लोग सोचते हैं कि ये भावुक लोग, भक्त लोग अपना कुछ भी बोलते रहते हैं। बोलते भगवान का इस प्रकार का रूप है, भक्ति करना चाहिए, ये भावुक लोग हैं। भावुकता का अर्थ क्या है? इसके अंदर कोई सत्य नहीं है। नहीं, आप प्रकट होके, खास करके शास्त्र में जो निरूपण किया गया कि आपका एक रूप है, दूसरा भक्तों का जो अनुभूति है, ये दोनों सत्य है करके आपने साबित किया। ऐसा करते करते आपने क्या किया, लोगों का जो, या खास करके अज्ञान है, उसको दूर किया, और साथ साथ में आपने अंततः जो शास्त्र में अनेकों अनेकों जो बातों कहा गया है वो सत्य करके साबित किया। इसलिए आचार्यगण कहते हैं, आपका प्रकट होना आपके ही वाणी का सबूत है, यू आर द प्रूफ। दूसरा बात ये कहते हैं कि आपका प्रकट होने के द्वारा आप सबको यही बताया कि मैं ही सभी लोगों का गंतव्य हूँ, आई एम द गोल फॉर एवरीथिंग। तीसरा बात ये है कि आई एम दैट यू आर द एफर्ट ऑफ एवरीथिंग। यानी दूसरे शब्दों में, आपको जानने के लिए कितना भी व्यक्ति प्रयास करे वो अपने प्रयास के द्वारा आपको जान नहीं सकता। जब तक आपकी कृपा नहीं होगी तब तक आपको जान नहीं सकता। ये तीसरी बात है। और चौथी बात ये है, द रिजल्ट ऑफ द होली स्क्रिप्चर्स। इतना वेद अध्ययन होता है, सब कुछ होता है, सारे शास्त्र का पठन पाठन होता है, उन सब का एक ही उद्देश्य है, उन सब का सार्थकता ये है, आपका दर्शन प्राप्त करना। अभी आपने दर्शन देके सारे शास्त्रों को कुछ मतलब दिया है, सारे साधकों को कुछ एक रिजल्ट प्रदान किया है। यानी हम मान लीजिए कोई कार्य कर रहे हैं, करते करते जाएंगे लेकिन उसका रिजल्ट नहीं होता है, उसका परिणाम नहीं मिलता है, तो क्या फायदा? तो भगवान की प्रकट होने से चार कार्य सिद्ध हुआ है आज का श्लोक को मिला के, पिछले श्लोकों में वर्णन हुआ है। सबसे पहला क्या है, यू आर द प्रूफ। आप भी आपके शास्त्र का, भगवान के भक्तों का, अनुभूति का गवाह हो, प्रूफ। दूसरा क्या है, आप प्रकट होकर सारे जगत को ये बताया कि आई एम द गोल, मैं ही जितने भी यज्ञ दान तप इत्यादि किया जाता है उन सब का आप ही एकमात्र उद्देश्य हो, गोल हो। तीसरी बात आपने साबित किया कि जब तक आपका कृपा नहीं होता है तब तक कितने भी लोगों का जितने प्रयास है वो प्रयास कोई फलभूत नहीं होता है। यानी आप ही एकमात्र, आपका कृपा ही एकमात्र प्रयास है। यानी हमारे सारे प्रयासों के पीछे एकमात्र उद्देश्य आपकी कृपा प्राप्त करना। अंततः जो भी व्यक्ति शास्त्र का अध्ययन करता है, अध्ययन करने का उद्देश्य क्या है? सारे शास्त्र का अध्ययन करने का उद्देश्य है, भक्ति के सारे कार्यकलाप करने का उद्देश्य है आपका दर्शन करना, यानी आपका प्रकट होने से चार कार्य सिद्ध हुआ है। खास करके इस श्लोक में देवतागण दो सौभाग्य का वर्णन करते हैं। पहला सौभाग्य क्या है? उनका सौभाग्य यह है कि इस श्लोक में कहा गया है, पहला सौभाग्य है कि दिश्या हरेर्यस्य भवत पदो भुवौ, भवत पदो पदो भुवौ। शास्त्र में कहा गया है कि ये जो पृथ्वी है भगवान के चरण कमलों से उत्पन्न हुआ है, एक। और शास्त्र में वर्णन हुआ है ये जो पृथ्वी जो है भगवान के विश्व रूप के जो चरण कमल है उसके बराबर तुलना किया गया है। मान लीजिए कोई व्यक्ति को पैर में बहुत दर्द है तो क्या करेगा? वो दर्द को निकालने के लिए प्रयास करेगा। वैसे ये पृथ्वी के ऊपर असुरों का भार के वजह से बहुत अत्याचार चल रहा था और पृथ्वी बहुत दुखी थी। ये पृथ्वी माँ बहुत दुखी होने की वजह से, अस्तित्व में पृथ्वी माँ दुखी है तो इसका अर्थ क्या है? आपका चरण कमल जो है वो दुखी था या वो पीड़ित हुआ था। आपने क्या किया? आपका चरण कमलों के अंदर जो पीड़ा है उसको निवारण करने के लिए आप प्रकट हुए, या प्रकट होने मात्र से निवारण हो गया समझ लीजिए। कभी कभी ऐसा होता है, मान लीजिए कि बहुत एक व्यक्ति बहुत बीमार है, बहुत दुखी है और तड़प रहा है, दर्द से पीड़ित हो रहा है। जैसे वो डॉक्टर आता है, वहां आते हैं, उसको ऐसा लगता है बस अभी मेरा दुख दूर हो गया। ऐसा नहीं कि उसको दुख दूर हुआ है, अभी दवाई नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया, दुख अभी गया नहीं है, लेकिन वो डॉक्टर को देखने से ही उसको ऐसा लगता है कि वो बहुत एकदम खुशी का महसूस होता है, अभी मेरा दुख दूर हो गया। नहीं होने पर भी अभी हो गया ऐसा सोचने लग जाते हैं। जैसे कोई बच्चा बहुत भूखा है, भूख के मारे बहुत रो रहा है, दुखी है, माँ को देख के उसका क्या हो जाता है? भले ही उसको अभी तक खाया नहीं, कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी वो सोचता है कि वे बस माँ आई है तो फिर पका के खिलाएगी। अभी भगवान का प्राकट्य अभी बस होने वाला है, तो इसलिए देवतागण कहते हैं आपका प्राकट्य होने से ये जगत का या पृथ्वी का जो दुख है वो दूर हो गया। तो ये जो वैसे अभी असुरों का नाश हुआ नहीं है, जैसे शुभाल है, दंतवक्र है, वो सब असुर अभी भी हैं। इसलिए देवतागण कहते हैं दृष्ट्या हरे स्याद भवतः पदो भुवौ, भवतः पदो भुवौ, आपका जो चरण कमल है यानी इधर पृथ्वी, चरण कमल होते स्थान, पृथ्वी को सूचित किया जा रहा है, भुवौ भारोपणित तव जन्म नेशितु, तव जन्म नेशितु, आपका जन्म इशितु, आपके आप सबके नियंता होने के कारण आपका जन्म लेने मात्र से ही सबसे पहला सौभाग्य यह है कि ये पृथ्वी माँ, पृथ्वी धरती बहुत दुखी थी, वो दुख जो है वो निवारण हो गया है या होने वाला है, हो गया समझ लीजिएगा। जैसे मैंने अभी दो उदाहरण दिया, एक डॉक्टर का उदाहरण दिया और एक बच्चे का उदाहरण दिया। माँ का दर्शन करने मात्र से भले उसके पास भले भूख मिटा नहीं है अभी, अभी उसको खाया नहीं है, लेकिन फिर भी उसको ऐसा लगता है कि बस चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आप सबको मालूम है भूदेवी कौन है? भूदेवी भगवान के पत्नी है, और ऐसा कहीं माना गया है क्योंकि ब्रह्मा जी ने इसको सृष्टि किया, ब्रह्मा जी का भी पुत्री माना गया है। तो अलग अलग स्थानों में भूदेवी का वर्णन अलग अलग तरीके से हुआ है। जब वराह ने भूदेवी को उठाए थे तब भूदेवी को उन्होंने गर्व प्रदान किया था, तो इस वजह से भूदेवी भगवान की पत्नी है। तो भगवान का प्रकट होने से देवतागण कहते हैं सबसे पहला ये बात ये है कि भूदेवी का जो भार है वो कम हो गया। तो भूदेवी का भार कम हो गया तो वो लोग कहते हैं कि हमारा बड़ा सौभाग्य क्या है इसमें। देवताओं का सौभाग्य ये है कि भूदेवी का भार किसकी वजह से था, असुरों की वजह से था। असुरों का वध हो रहा है तो सौभाग्य किसका है, वो देवताओं का है। वैसे देखा जाए जितने भी प्राणी इस जगत में रहते हैं वो सारे जीव सारे प्राणी पृथ्वी माँ के ही पुत्र है, लेकिन असुर भी पृथ्वी माँ के पुत्र है, लेकिन फिर भी ये बहुत सारे तंग कर रहे थे, बहुत सारे अत्याचार कर रहे थे, इसलिए भूदेवी ने प्रार्थना किया ब्रह्मा जी के पास। ये शुरुआत में आपको मालूम है प्रसिद्ध घटना है, भूदेवी ने गाय का रूप धारण किया, गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी ने शिव जी और अन्य देवताओं को लेके भगवान के पास क्षीर सागर पे क्षीरम तीर पयोनिधे उधर जाके पुरुषम पुरुष सूक्तेना पुरुष सूक्तों के द्वारा उन्होंने बहुत सुंदर स्तुति किया। उसके बाद भगवान ने आदेश दिया, मैं जानता हूँ पृथ्वी माँ का दुख क्या है, मैं स्वयं आऊँगा। तो इधर ब्रह्मा जी क्यों भगवान के पास गए, स्वयं पृथ्वी माँ का जो भार है उसको कम करने के लिए क्यों नहीं प्रयास किए। वैसे कुलशेखर आलवार भी कहते हैं भगवान के प्राकृत्य के पीछे अनेकों कारण हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध कारण ये है कि क्या है, पृथ्वी बारनाशो मुकुंद। भगवान के प्राकट होने के पीछे आप कारण लिखते जाएंगे अनंत कारण है, क्योंकि भगवान अनंत है और उनके कार्यकलाप के पीछे कारण भी अनंत है। लेकिन प्रसिद्ध कारण क्या है, प्रसिद्ध कारण यह है कि पृथ्वी भारनाशो मुकुंद। अगर पत्नी बहुत दुखी है तो उस पत्नी का जो दुख है उसको दूर करने का हक जो है, अधिकार जो है, केवल पति का ही बनता है। भले ही किसी और के पास उस दुख को दूर करने का सामर्थ्य है भी, उसको करना चाहिए, उसको दूर करने के लिए नहीं जाना चाहिए, या वो पत्नी को भी वो स्त्री को भी किसी और का जो सहायता जो है उनका दुख दूर कराने के लिए वो स्वीकार भी नहीं करना चाहिए। तो इसलिए भले ही ब्रह्मा शिव जी बड़े बड़े शक्तिशाली देवता हैं, तो लोगों ने सोचा कि पृथ्वी माँ का जो दुख है उसको दूर करने का अधिकार केवल कृष्ण का है, क्योंकि कृष्ण जो है उनका चरण ही पृथ्वी माँ है, पृथ्वी माँ कोई और नहीं है, भगवान के चरण कमलों का मूर्तिमान स्वरूप है। कृष्णस फीट हैज मैनिफेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ दिस अर्थ। तो इस तरीके से सारे देवतागण कहते हैं हे भगवान आपका प्रकट होने से हमारा बड़ा सौभाग्य है, पता नहीं आपका प्राकट्य हमारे लिए भले ही नहीं हुआ है सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ है, आपका प्राकट्य हुआ है पृथ्वी माँ के लिए, लेकिन भाग्य किसका है, हमारा भाग्य है। तो इस प्रकार ये प्रार्थना करने के पीछे देवतागण अपनी जो कृतज्ञता है द ग्रैटिट्यूड वो व्यक्त कर रहे हैं। भले हमारे पास कोई योग्यता नहीं है लेकिन आप प्रकट हुए हो, आप प्रकट होके हमको बड़ा सौभाग्य प्रदान किया। इस प्रकार पहले की दो लाइन में वो कहते हैं जन्मनेशितुः यू आर जो द कंट्रोलर, आप सारे चीज़ों के नियंता हो, सभी लोगों के नियंता हो, आपका जन्म लेने से तो क्या हुआ, तो ये जो भार है पृथ्वी के ऊपर भुवः भारः अपनीतः तव जन्मनेशितुः, आपका जन्म लेने की वजह से पृथ्वी का भार तो दूर हुआ, पृथ्वी का भार दूर होने ही हमारा सौभाग्य है। पृथ्वी का भार दूर होने का अर्थ है असुरों का वध, और असुरों का वध होने का अर्थ है हमारा सौभाग्य है। बिना हम उनसे युद्ध किए, बिना कुछ लाए किए, कुछ किए बिना, हम तो आपसे प्रार्थना भी नहीं किए थे, हमको मालूम है अगर हम प्रार्थना करते तो आप आते कि नहीं वो नहीं मालूम, लेकिन पृथ्वी माँ जो आपकी स्वयं पत्नी है तो उसके लिए आप आए। भूदेवी जो है लक्ष्मी के तीन स्वरूप होते हैं, श्री भू नीला, श्री लक्ष्मी, नीला लक्ष्मी और भू लक्ष्मी। खास करके जो सौभाग्य भगवान ने भू लक्ष्मी को प्रदान किया है, अन्य लक्ष्मियों को प्रदान नहीं किया है। जैसे श्री लक्ष्मी जो है भगवान के वक्षस्थल में निवास करती हैं, कभी कभी भगवान के चरण कमलों को वो सेवा करती हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का स्वभाव है कि जो भूदेवी के ऊपर उन्होंने जो सौभाग्य प्रदान किया वो कहीं और किसी के ऊपर प्रदान नहीं किया। तो इस सौभाग्य का वर्णन आगे की दो श्लोकों में वर्णन हुआ है। आप देखेंगे दिष्ट्या, दिष्ट्या शब्द पहला लाइन के पहला शब्द है और तीसरा लाइन का भी पहला शब्द है। तो पहला दिष्ट्या का अर्थ यह है कि सौभाग्य, क्या वो सौभाग्य है? असुरों का वध करके आपने हमारे ऊपर विशेष सौभाग्य प्रदान किया। और दूसरा सौभाग्य हमारे ऊपर क्या प्रदान किया? वो सौभाग्य को पूछो ही मत, ये इससे बढ़कर सौभाग्य है। असुरों का वध करना इतना बड़ा सौभाग्य नहीं है जितना दूसरा सौभाग्य वर्णन भी हम करने वाले हैं। दूसरा सौभाग्य क्या है? दिष्ट्या अंकितम त्वत् पदकैः सुशोभनैः, अंकितम आपने अर्पण किया, आपने प्रदान किया। क्या अर्पण किया? तवत् पदकैः सुशोभनैः, तवत् पदकैः आपके चरण कमलों का या चरण चिन्हों को आपने इस पृथ्वी के ऊपर प्रदान किया। पर आश्चर्य की बात यह है कि भगवान के चरणों का मूर्तिमान स्वरूप पृथ्वी है और वही भगवान इस पृथ्वी के ऊपर प्रकट होकर इस पृथ्वी के ऊपर चल के अपने चरण चिन्हों को इस पृथ्वी के ऊपर अर्पण करते हैं। जैसे वेदों में कहा गया है चंद्रमा मनसो जाता, चंद्र जो है भगवान के मन से प्रकट हुआ है। अलग अलग प्रकार के अलग जो जो पृथ्वी में या ब्रह्मांड में जो चीजें हैं भगवान के शरीर से अलग अलग जगह से प्रकट हुआ है, लेकिन पृथ्वी जो है वो ये भगवान के चरण कमलों से प्रकट हुआ है। तो भगवान के चरण कमलों से पृथ्वी प्रकट हुआ है, प्रकट होने के बाद भगवान ने ऐसे नहीं छोड़ दिया, उन्होंने क्या किया? उस पृथ्वी के ऊपर आके उन्होंने क्या किया? उन चरण कमलों का चरण चिन्ह भी छोड़ दिया। इस तरीके से ये जो पृथ्वी है इसका जो महिमा है उसका वर्णन देवता लोग स्वयं कहते हैं। वैसे छठे स्कंद में भी एक जगह देवता लोग कहते हैं देखो अहो भाग्यम, अहो भाग्यम, कितना भाग्य देखो पृथ्वी निवास करने वालों का। भाग्य ये है कि सबसे पहला भाग्य है कि इस पृथ्वी में बहुत सारा दुख है, इंद्र तृप्ति जो है आसानी से मिलता नहीं है। स्वर्ग में क्या है? बहुत सारा इंद्र तृप्ति मिलता है, इसलिए वो बोलते हैं कितना दुर्भाग्य हमारा, क्योंकि इंद्र तृप्ति के सामग्री इतना मिल रहा है तो हम भगवान को भूल जाते हैं। तो ये देवता लोगों का एक कहना है, हाँ इंद्र तृप्ति एकदम बिल्कुल जैसे नल में पानी बहता है उसी प्रकार मिलता है, जहां चाहे उधर मिल जाता है स्वर्ग में इंद्र तृप्ति। इसलिए सबसे पहला भाग्य कहते हैं कि देखो ये पृथ्वीवासियों का कितना बड़ा सौभाग्य है कि उनको इंद्र तृप्ति मिलने में बहुत मुश्किल होता है और उनको थोड़ा बहुत सुख प्राप्त करने में बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत सारा दुख है, इसके वजह से भगवान का शरण जल्दी ले सकते हैं। दूसरा सौभाग्य यह है कि भगवान जब लीलाएं करते, भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, प्रकट होके और उनको ऐसा आसान तरीका देते हैं जिसके द्वारा वो भगवान के धाम में जा सकते हैं। जैसे खाली हरिनाम जप करो चले जाएंगे, तो देवता लोग भले ही उनके पास बहुत सारा सुख सुविधा, इतना सारा भोग की सामग्री है, फिर भी वो चाहते हैं कि हमारा जन्म कब, काश हमारा पृथ्वी कब होगा। अभी ये देखिए, मान लीजिए कोई एक 8 माले का बिल्डिंग है, कोई टॉप फ्लोर में रहता है, अगर उसको बिल्डिंग के बाहर निकलना होगा तो कहाँ से जाना पड़ेगा? उसको ग्राउंड फ्लोर में आके ही जाना पड़ेगा, है कि नहीं? तो देवता लोग सोचते हैं भले हम ऊपर के माले में हैं लेकिन हमको मुक्ति प्राप्त कर रहे हैं तो कहाँ जाना होगा? तो ग्राउंड फ्लोर में आना पड़ेगा, तो पृथ्वी में ही आना पड़ेगा। तो कितना बड़ा सौभाग्य देखे पृथ्वी में रहने वालों की कि वो भगवान के बहुत नजदीक है। इतना ही नहीं, भगवान स्वयं आते हैं और ये पृथ्वी के ऊपर अपने चरण चिन्हों को छोड़ के जाते हैं। जैसे व्रज जो है उसको व्रज कहा गया है, क्यों कहा गया है, जहां जिस जगह पे परब्रह्म व्रजते हैं, व्रजना मतलब चलते हैं, नंगे पैर चलते हैं, इसलिए व्रज का नाम व्रज है। व्रज संस्कृत भाषा में व्रज का अर्थ है चलना। जिस जगह पे परब्रह्म चलते हैं उस जगह को व्रज कहा गया है। भगवान व्रज में नंगे पैर चले और उनके चरण चिन्ह हैं वो सबको दिखाई पड़ता था। खासकर प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं, अक्रूर जब वृंदावन में या नंदगांव में प्रवेश किया कृष्ण और बलराम को लेके जाने के लिए, कंस ने कहा था अक्रूर को जाओ तो कृष्ण और बलराम को लेके आओ, बड़ा मेला है वो है, लेकिन उनको उद्देश्य था मारने का। जब अक्रूर कृष्ण और बलराम को लेके जाने के लिए जब वृंदावन प्रवेश कर रहे थे, भागवतम में वो प्रसंग जो है बहुत पढ़ने लायक है, बहुत अद्भुत प्रसंग है। जैसे अक्रूर भगवान के चरण चिन्हों को देख के तुरंत आनंद विभोर होकर प्रणाम किया, प्रणाम करके उस धूल में लोटपोट करने लगे, फिर वापस खड़े हुए तो दूसरा चरण चिन्ह दिखाई पड़ा, फिर वापस गिर पड़े। अस्तित्व में अक्रूर को वैसे आधे घंटे का रास्ता है कि नहीं, मथुरा से वृंदावन आधे घंटे का रास्ता है, लेकिन अक्रूर वृंदावन पहुंचते पहुंचते उनको शाम हो गया। सुबह निकले थे मथुरा से और शाम तक वही कर चलते गए। इतना देर क्यों लगा, क्योंकि भगवान के चरण चिन्हों को देख के थे तुरंत लोटपोट होते थे, गिर जाते थे, प्रार्थना करते थे। इसलिए अक्रूर जो है नवधा भक्ति, कौन से भक्ति के आचार्य है, वंदनम के आचार्य है। ऋतु महाराज जो है अर्चनम के आचार्य है, तो जैसे श्रवणम उसके आचार्य कौन है, परीक्षित महाराज। कीर्तनम का सुखदेव गोस्वामी, स्मरणम का प्रहलाद महाराज, पदसेवनम का लक्ष्मी जी, अर्चनम का ऋतु महाराज और वंदनम अक्रूर। तो वंदनम जो है वो तुरंत प्रणाम करने लगे, ऐसे प्रणाम करते करते। और श्री प्रभुपाद जी कहते हैं गोपियां हमेशा भगवान की चरण कमलों को ध्यान करती थी। गोपी गीत में भी वो भगवान की चरण कमलों का ध्यान करते हुए कहती है, पता नहीं कालिया ने कौन सा सौभाग्य किया था, तो हम जिन चरण कमलों की आशा करते कि वो चरण कमल हमारे स्तनों के ऊपर आए, लेकिन वो चरण कमल आप जबरदस्ती कालिया को दिए। तो भगवान के चरण चिन्ह है या चरण कमलों का जो चिन्ह है वो व्रज में हर जगह छाया हुआ रहता है। इसलिए जब कृष्ण वृंदावन से मथुरा जाने के बाद भी सारे व्रज की गोपियां, अन्य जितने भी व्रजवासी है, भगवान के चरण चिन्हों को देख के बड़ा आनंदित होते थे। फिर जितना आनंदित होते थे तुरंत उतना ही उनका विरह का दुख का अनुभव होता था, क्योंकि विरह में जब जितना भगवान की चिन्हों का संबंधित चीजों का स्मरण होता है तो तुरंत आनंद आता है, लेकिन वही आनंद जो है फिर और दुख का कारण बनता है। ये बड़ा गहरा विषय वस्तु है, ये अभक्तिरसामृत सिंधु में और अन्य गोस्वामी के ग्रंथों में वर्णन हुआ है गोपियों के विरह का। उन विरह का जो कारण भी भगवान के चरण कमल थे, स्मरण का भी कारण भगवान के चरण कमल थे और विरह का भी कारण जो है भगवान के चरण कमल थे। तो ये जो भगवान के जो चरण कमलों का जो चिन्ह है उसका अविस्तार से वर्णन श्री रूप गोस्वामी पाद ने किया है। अभी हमारे पास वो समय नहीं है वो सब चीज़ पर चर्चा करना, एक एक चिन्ह का एक एक उद्देश्य है। जब एक भक्त भगवान के चरण कमलों का जो चरण चिन्ह है एक एक चिन्ह का स्मरण करता है तो उनको एक एक फायदा होता है। गदा का कोई स्मरण करता है तो क्या होगा, उनके सारे पाप ऐसे नष्ट हो जाते हैं। ऐसे एक एक चिन्ह का एक एक वर्णन है जो है, और अनेकों अनेकों चिन्ह हैं, ऐसा मुझे बराबर याद नहीं है, 21 चिन्ह है टोटल। लेकिन द्रौपदी अपने तात्पर्य में केवल शंख चक्र गदा पद्म का वर्णन करते हैं और साथ साथ में कुछ और दो जो चिन्ह हैं उसका भी वर्णन करते हैं। सो द गोपी इज ऑलवेज थॉट ऑफ द लॉर्ड लोटस फीट व्हेन ही वाज वॉकिंग इन द पास्चरिंग ग्राउंड्स एंड डिस्क्राइब the previous verse. Simply by thinking of the Lord's lotus feet, gopis were completely absorbed in transcendence. भगवान के चरण के चिन्हों का स्मरण करने मात्र से तो सारे गोपियां पूरा दिव्य स्तर में युक्त थे। आविष्ट चेता न भवाय कल्पते। उसी प्रकार प्रभुपाद जी कहते हैं जो व्यक्ति भगवान के वन हु इज ऑलवेज अब्सॉर्ब्ड इन द थॉट्स ऑफ द लॉर्ड इज बियॉन्ड द मटेरियल प्लेटफॉर्म एंड विल नॉट अटेन रिमेन द मटेरियल वर्ल्ड। जो भगवान के जो गुणों के विषय में या उनके चिन्हों के विषय में जो भगवान जो हमेशा ध्यान करता है वो भी ये कभी भी भौतिक जगत के प्रभाव में नहीं रहता। इसलिए देवतागण दूसरा जो महान सौभाग्य जो पृथ्वी माँ को प्राप्त हुआ वो सौभाग्य को भी इस श्लोक में उल्लेखन करते हैं। इस श्लोक में उल्लेखन करते हुए वो लोग कहते हैं दिष्ट्यांकितम तवत पदके सुशोभनैर। सुशोभनैर का अर्थ है कि आपने ये जो पृथ्वी को आपके चरण चिन्हों के द्वारा डेकोरेट किया है। सुशोभनैर का अर्थ है कि सुसज्जित करना। कुंती महारानी भी इस बात को कहती है अपनी प्रार्थनाओं में कि त्वत्पदैर अंकिता भाति स्वलक्षण विलक्षित ही तत्पदैर अंकिता भाति। हे भगवान आपके जो चरण कमलों का चिन्हों के द्वारा ये पृथ्वी अभी सुशोभित है इसलिए क्या हो रहा है ये पृथ्वी बहुत सुंदर दिखाई पड़ रहा है। हाँ अभी आप सोच रहे कि अभी हस्तिनापुर का गद्दी हमारे पास वापस आ गया है ये पांडव लोग बहुत सुखी है। आप इधर से चले जाओगे द्वारका। जैसे आप द्वारका चले जाओगे ये अभी ये भूमि यानी हस्तिनापुर जो है बहुत सुंदर दिखाई पड़ रहा है। क्यों? ये बड़े बड़े महल की वजह से नहीं और बहुत सारा ऐश्वर्य की वजह से नहीं। त्वत्पदे रंकिता भाति आपके चरण कमलों का जो चरण चिन्ह जो है वो इधर अंकित हुआ है इसके वजह से हस्तिनापुर सुंदर दिखाई पड़ रहा है। आप जैसे इधर से चले जाओगे आपके चरण चिन्ह तो दिखाई नहीं पड़ेगा। आपका चरण चिन्ह दिखाई नहीं पड़ेगा तो ये पूरा हस्तिनापुर बर्बाद हो जाएगा। बिकम कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। आप ये मत सोचो कि हम सुखी हैं इसलिए आप जा सकते हो। नहीं, आपका उपस्थिति आपके चरण चिन्हों की वजह से ये सब कुछ सुंदर दिखाई पड़ रहा है। इतना ही नहीं, याय में जनपदा शुद्धा सुपक औषधि विरुद्ध। जितने भी ऐसा लग रहा है कि सारे वनस्पति उग रहे हैं सब धन धान्य का समृद्धि हो रही है ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके ईक्षते हे कृष्ण आपके जो दृष्टि के वजह से ही ये सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। आप चले जाओगे उसका कोई हमको सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो इसलिए सारे देवता लोग कहते हैं कि तत्पदेश शोभने द्रक्ष्याम गाम धाम च तवानुकंपितम। द्रक्ष्याम गाम धाम द्रक्ष्याम गाम धाम। गाम धाम गाम का अर्थ क्या है? गाय। लेकिन ये गाय इधर सूचित करता है पृथ्वी माँ को सूचित किया जा रहा है। क्यों क्यों सूचित किया जा रहा है? दो कारणों की वजह से। पृथ्वी माँ को इधर गाम यानी गाय के बराबर तुलना किया गया है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी माँ ने गाय का रूप धारण करके भगवान के पास गई थी। तो दूसरा कारण ये है कि हे भगवान आपके चरण चिन्ह इस पृथ्वी के ऊपर होने की वजह से पृथ्वी जो है वो कामधेनु बन गया है। कामधेनु का अर्थ क्या है? जो आप कामना करो वो प्रदान करने में समर्थ है उसको कामधेनु कहा जाता है। तो इसलिए देवतागण कहते हैं ये पृथ्वी आपके चरण चिन्हों के द्वारा सुशोभित होने की वजह से वो एक कामधेनु बन गया है। अगर आपके चरण कमल इस पृथ्वी के ऊपर नहीं रहते तो ये पृथ्वी कुछ भी प्रदान नहीं करता, ये पूरा सूखा रह जाता है। और आगे गाम द्रक्ष्यामगाम ध्याम, ध्याम का अर्थ है कि हेवनली प्लैनेट, यानी ध्याम च, यानी स्वर्ग के लोक। तो भगवान के, भगवान ने तो स्वर्ग के ऊपर तो नहीं चले, तो वो भी स्वर्ग भी बहुत समृद्ध हो गया है। ये क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान दिति के पुत्र के रूप में, उपेंद्र वामन के रूप में प्रकट हुए थे। जब वामन के रूप में जब भगवान प्रकट हुए, तब उन्होंने क्या किया, जब अपने चरण को पूरा ऊपर तक फैलाए, तब क्या हुआ, उधर से एक ब्रह्मांड में छेद हुआ और सबसे पहला जो विरजा का जल जो है उनके चरण को धोके सबसे पहला ब्रह्मा जी कमंडों में गिर पड़ा। ब्रह्मा जी कमंडलों में जब गिर पड़ा, साथ साथ में ध्रुव महाराज के जो आश्रु है उसके साथ मिलके गंगा जी जो है सबसे पहला ब्रह्मा जी कमंडलों में आए। तो ब्रह्मा जी कमंडलों से नीचे गिर के स्वर ध्वनि का रूप धारण करके गंगा स्वर्ग में चलने लगी। तो देवतागण कहते हैं, आपका चरण चिन्ह तो दिखाई पड़ता है पृथ्वी के ऊपर, लेकिन आपका जो चरण कमलों का जो कमाल है उसके वजह से हमारा स्वर्ग भी पावन हो गया है। ऐसा नहीं कि केवल पृथ्वी ही, क्योंकि आपके चरण चिन्हों को धोया हुआ पानी जो है स्वर्गनी के रूप में, स्वर्ग में चलने वाली गंगा है, उस रूप में प्रकट हुई। गंगा को गंगा क्यों कहा जाता है? गाम गमयति इति गंगा। गाम का अर्थ है इधर इस प्रसंग में, गाम का अर्थ है आकाश, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, भूमि रापो अनलो वायु खम, खम को कभी गाम भी कहा जाता है। तो आकाश में चलने वाली है, प्रभावित करने वाली है, इसको क्या कहा जाता है, गाम गमयति इति गंगा। तो गंगा भी प्रवाहित होता है, इसलिए तव अनुकंपिताम गाम दाम च तव अनुकंपिताम, आपके विशेष अनुकंपा हमारे ऊपर है, हम उसको कभी भूल नहीं सकते। इस प्रकार सारे देवता लोग प्रार्थना करते हैं। खास करके दो प्रकार की जो सौभाग्य है देवता उनका, वो व्यक्त कर रहे हैं। इसी प्रकार हमको, भक्तों को भी देवताओं के पदचिन्हों में चलते हुए भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। क्या प्रार्थना करना चाहिए? प्रार्थनाओं में एक अंग होता है, वो है विज्ञप्ति। मतलब हमारा योग्यता नहीं होने पर भी आपका विशेष कृपा हमारे ऊपर रहा, तो ये भक्त की शरणागति का एक लक्षण है। तो ये जो प्रार्थना है, तो भगवान के एक शरणागति का एक अंग है, जहाँ देवता लोग यही प्रार्थना करते हैं, हमारे योग्यता नहीं है लेकिन आपका मेरे ऊपर बहुत विशेष कृपा है, देयर इज वेरी वेरी स्पेशल मर्सी, पता नहीं हमारे कितना बड़ा सौभाग्य है। तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए भगवान के पास जाके, भगवान पता नहीं मेरे ऊपर ऐसा क्यों कर दिया, आपने क्या किया मेरे साथ, ये सब चीज़ें जो है एक शरणागति का लक्षण नहीं है। शरणागति का लक्षण क्या है, हर अवस्था में हमको भगवान के पास जाके प्रार्थना करना चाहिए, बताना चाहिए भगवान को, हे भगवान आपका विशेष कृपा मेरे ऊपर है। अगर मान लो कि नहीं भी है तो सुन के भगवान दे देंगे। तो इसलिए वी शुड ऑलवेज प्रे टू कृष्णा ऑफ स्पेशल मर्सी दैट यू ऑलरेडी बेस्टोड ऑन टू अस। तो दो प्रकार की कृपा है, एक है असुरों का वध कर रहे हैं या करने वाले हैं, या दूसरा क्या है कि आपके चरण कमलों का जो चरण चिन्ह है उसके द्वारा ये पृथ्वी सुशोभित है, और आपके चरणों कमलों से उत्पन्न हुआ जल जो है हमारे स्वर्ग को भी पवित्र कर रहा है। इसलिए नाम धाम दक्षाम गाम धाम च तवा अनुकंपिताम, आपका विशेष अनुकंपा हमारे ऊपर है, बिकॉज ऑफ योर स्पेशल मर्सी वी हैव गॉट द ग्रेट फॉर्चून, टू ग्रेट फॉर्चून्स, दो हमारा सौभाग्य का देवता लोग इस श्लोक में वर्णन करते हैं। आखिरी बात यह है, भगवान के चरण चिन्ह का और एक अर्थ ये है, भगवान के जो आज्ञा को स्वीकार करना भी भगवान का चरण चिन्ह माना जाता है। एक एक आज्ञा जो है उसको भी छिन्न कहा गया है। तो हम जितना भगवान और गुरु की आज्ञा को पालन करेंगे वो भगवान के चरण चिन्ह की उपस्थिति के ही समान है। तो हमने अभी कुंती महाराज ने कहा जहाँ आपका चरण चिन्ह है, चरण चिन्ह आपके दिखाई पड़े इसलिए सुंदर है। इससे जितना हद तक हम भगवान गुरु की आज्ञा को पालन करेंगे हम उतना सुंदर होते हैं और उतना हमारी समृद्धि भी रहता है। और जहाँ भगवान के चरण चिन्ह नहीं है, यानी भगवान के जो आज्ञाओं को पालन नहीं किया जाता है, तो उधर सुंदरता नहीं है कोई भी, उधर कोई किसी प्रकार का समृद्धि भी नहीं। ये भी शिक्षा हम ग्रहण कर सकते हैं। हरे कृष्णा। लंबा समय कोई प्रश्न है? टाइम बहुत हो गया लेकिन ठीक है। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की चाय।